अध्याय 9 स्कंदगुप्त शासनकाल। कुमारगुप्त की चांदी की मुद्राओं के ऊपर उसके शासन की अंतिम तिथि 136 गुप्त संवत मिलती है। यह तिथि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त 136 गुप्त संवत अर्थात 455 ईस्वी में सिंहासनासीन हुआ था। उसके शासन की अंतिम तिथि 148 गुप्त संवत थी। यह तिथि गढ़वाभिलेख और उसकी मुद्राओं पर मिलती है। प्रारंभिक कठिनाइयां, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुमारगुप्त के शासन के अंतिम चरण में गुप्त साम्राज्य को बाह्य शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वृद्ध को कुमारगुप्त ने उन शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध संचालन का भार अपने पुत्र स्कंदगुप्त को दिया। निम्नलिखित साक्ष्य इन शत्रुओं का उल्लेख करते हैं। पहला, भीतरी अभिलेख। इसका कथन है कि गुप्त वंश की लक्ष्मी विचलित हो गई। उसे स्थायी बनाने के प्रयत्न में स्कंदगुप्त को एक रात भूमिगत होना पड़ा, अर्थात भूमि तल पर सोना पड़ा। पुष्यमित्र शक्ति और धन के बड़े संपन्न हो गए थे। स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया और पुष्यमित्र नरेश रूपी पादपीठ पर अपना बायां पैर रखा। पिता की मृत्यु पर वंश लक्ष्मी विचलित हो गई। स्कंदगुप्त ने अपने भुजबल से शत्रुओं को जीतकर उसे पुनः स्थापित किया और विजय प्राप्त हो गई। ऐसी घोषणा करता हुआ वह हर्षातिरेक से रोती हुई अपनी माता के पास उसी प्रकार गया जिस प्रकार शत्रुओं का वध करके श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसकी दो भुजाओं ने पृथ्वी को कपा दिया। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख उसके शत्रुओं की तुलना मान और दर्प से अपने फन उठाते हुए सर्पों से करता है और कहता है कि इन सर्पों का दमन करने के लिए स्कंदगुप्त ने गरुड़ रूपी अपने प्रतिनिधियों की शक्ति का उपयोग किया। पिता के मरने पर उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। उसका यशगान उन मलेच्छों के देशों में भी होता था जिसका गर्व समूल नष्ट हो गया था। तीसरा, कथा सरिस सागर। विक्रमादित्य ने मलेच्छों को पराजित किया। उसके पिता महेंद्रादित्य ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिंहासन त्याग दिया और वाराणसी चला गया। चौथा, चंद्र गर्भ परिपेक्षा। दुप्रसहस्त ने केवल 12 वर्ष की आयु में यवनों, पलियों और शकुनों को पराजित किया। उसके पिता महेंद्र सेन ने उसे राजा बनाकर संन्यास ले लिया। डॉक्टर जायसवाल ने महेंद्र सेन का समीकरण कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के साथ और दुप्रहस्त का समीकरण स्कंदगुप्त के साथ किया है। इन आधारों पर स्कंदगुप्त के निम्नलिखित शत्रुओं के नाम ज्ञात होते हैं। पहला, पुष्यमित्र। इस जाति के विरुद्ध स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन पीछे किया जा चुका है। दूसरा, हूण। अधिकांश विद्वान जूनागढ़ अभिलेख के मलेच्छों का समीकरण भीतरी अभिलेख के हूणों के साथ करते हैं। कथा सरिस सागर ने भी हूणों को मलेच्छ कहा गया है। चंद्रगर्भ परिपेक्षा में यमन, पलहिक और शकुन भी संभवतः हूण जाति के आक्रमण का संकेत देती हैं। जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छों की पराजय का उल्लेख है। इन अभिलेख की तिथि 136 गुप्त संवत अर्थात 455 ईस्वी है। अतः हूणों की पराजय स्थिति के पूर्व ही हो गई होगी। हरनले महोदय का यमन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में नहीं हुआ। भीतरी अभिलेख में स्पष्ट रूप से हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। स्मित महोदय का विश्वास था कि स्कंदगुप्त को अनेक हूण आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और अंत में वह हूणों द्वारा पराजित हुआ था। परंतु भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख न तो अनेक हूण आक्रमणों का वर्णन करते हैं और न स्कंदगुप्त की पराजय का। स्कंदगुप्त के शासन काल में एक ही हूण आक्रमण हुआ और वह हूणों को पराजित करने में सफल हुआ। डॉक्टर राखल दास बनर्जी के इस कथन का कोई प्रमाण नहीं है कि तीसरे हूण आक्रमण का विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में गवर्नर नियुक्त करने के पूर्व स्कंदगुप्त को बड़ा विचार करना पड़ा था। अंत में उसने इस पद के लिए पाणदत्त को चुना। स्कंदगुप्त की इस विशेष चिंता को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि सौराष्ट्र साम्राज्य का चिंतादायक प्रांत था और संभवतः यही हूण आक्रमण हुआ था। मौर्यों ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा को विशेष महत्व दिया था। उन्होंने न केवल संपूर्ण पंजाब पर अपना दृढ़ शासन रखा वरन अपने साम्राज्य को वैज्ञानिक सीमा देने के लिए उसे हिंदूकूश तक विस्तृत किया। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि साधन संपन्न होते हुए भी गुप्तों ने किसी दृढ़ पश्चिमोत्तर नीति का पालन नहीं किया। हिंदू कुश की बात तो दूर रही, उन्होंने सिंधु नदी तक के प्रदेश पर भी सदैव दृढ़ आधिपत्य नहीं रखा। अधिक से अधिक पंजाब की विदेशी जातियों के साथ उन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा। परिणामतः पश्चिमोत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे खैबर और बोलन असुरक्षित रहे और यहीं से आकर हूणों ने मालवा और मध्य प्रदेश तक आक्रमण किए। हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त की विजय बड़ी महत्वपूर्ण थी। यदि वह न होता तो संभव था कि हूण संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद डालते। संभवतः इस विजय के कारण ही उसकी कीर्ति देश के बहुत बड़े भाग में फैल गई। इस विजय की स्मृति कथा सरिस सागर, चंद्र गर्भ परिपेक्षा और चांद्र व्याकरण में भी सुरक्षित है। नागों से युद्ध जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त द्वारा भुजगों के दमन का उल्लेख है। भुजग दांग का पर्यायवाची है। इस आधार पर डॉक्टर फिल्ट ने अनुमान किया है कि संभवतः स्कंद गुप्त ने नागों को भी युद्ध में पराजित किया था। वाकाटकों से युद्ध बालाघाट ताम्रपत्र में वाकाटक नरेश के साम्राज्य में कौशल मेकल और मालवा सम्मिलित थे। नरेंद्र सेन का शासनकाल लगभग 440 से 460 ईस्वी था। इस प्रकार वह स्कंद गुप्त का समकालीन था। हम जानते हैं कि मालवा गुप्तों के अधीन था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार यहाँ कुमार गुप्त का सामंत बंधु वर्मन राज्य करता था। फिर बालाघाट ताम्रपत्र में नरेंद्र सेन को मालवा का अधिपति कैसे कहा गया है? डॉक्टर दांडेडकर का मत है कि नरेंद्र सेन ने स्कंद गुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों से लाभ उठाकर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था और स्कंद गुप्त से मालवा छीन लिया था, परंतु डॉक्टर अल्टेकर इस मत को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि इस समय वाकाटक वंश और बस्तर के नल वंश के बीच शत्रुता थी, अतः नरेंद्र सेन गुप्तों के साथ शत्रुता मोल लेने की बात कभी नहीं सोच सकता था। डॉक्टर अल्टेकर का विश्वास है कि गुप्तों के अधीन मालवा के सामंत ने स्कंद गुप्त के समय में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी होगी। अपने इस कार्य में विद्रोही सामंत ने संभवतः वाकाटकों से भी कुछ सहायता प्राप्त की होगी। इसी सहायता दान के आधार को लेकर बालाघाट ताम्रपत्र में नरेंद्र सेन को मालवा का अधिपति कहने की अतिरंजना की गई है। माला संवत 524 के मंदसौर अभिलेख में मालवा के एक अन्य शासक प्रभाकर का नाम आता है। उसके सेनापति दत्त भट्ट ने एक स्तूप आराम और कूप बनवाए थे। दत्त भट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविंद गुप्त के सेनापति वाय रक्षित का पुत्र था। इस अभिलेख का यह भी कथन है कि प्रभाकर ने गुप्तों के शत्रुओं का दमन किया। संभवतः ये शत्रु मालवा का कोई सामंत एवं उसके सहयोगी थे। कुमार गुप्त प्रथम के समय मालवा का सामंत बंधु वर्मन था। अनुमानतः उसी के किसी वंशज ने स्कंद गुप्त के विरुद्ध विद्रोह किया होगा। संभव है कि उसे वाकाटकों ने भी सहायता दी हो। अंत में स्कंद गुप्त ने उसे पराजित करके अपदस्त कर दिया और मालवा में प्रभाकर को अपना सामंत बनाया। इस प्रकार मालवा अतंतो गत्वा स्कंद गुप्त के अधीन रहा। 136 गुप्त संवत के जूनागढ़ अभिलेख में उसका साम्राज्य सौराष्ट्र तक विस्तृत बताया गया है। 141 गुप्त संवत के कहोम अभिलेख और 146 गुप्त संवत के इंदौर ताम्रपत्र से विदित होता है कि जिस समय ये अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए उस समय स्कंद गुप्त के साम्राज्य में शांति थी। अतः इस काल में भी मालवा उसके साम्राज्य में ही रहा होगा। कॉम्बे समुद्र तट पर प्राप्त उसकी मुद्राएं भी पश्चिमी भारत पर उसका आधिपत्य सिद्ध करती हैं। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने स्कंदगुप्त के विरुद्ध पुष्यमित्र और मालवा के विरोधी तथा विद्रोही गुप्त सामंत को सहायता भले ही दी हो, परंतु स्कंदगुप्त के साथ उसके प्रत्यक्ष युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तराधिकार का युद्ध डॉक्टर मजूमदार का मत है कि कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त शांतिपूर्ण रूप से राज्याधिकारी नहीं हुआ। उसे सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने भाई पुरुगुप्त के साथ युद्ध करना पड़ा। इस उत्तराधिकार युद्ध के संबंध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला, वीतरी स्तंभ लेख और बिहार स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को कुमारगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी बताया गया है। वीतरी राजमुद्रा में पुरुगुप्त और कुमारगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि कुमारगुप्त के कम से कम दो पुत्र थे और दोनों ही ने राज्य किया था। पुरुगुप्त को पराजित करके ही स्कंदगुप्त ने राज्य पाया था। दूसरा, किसी भी अभिलेख में स्कंदगुप्त की माता का नाम नहीं दिया गया है, परंतु भीतरी राजमुद्रा में पुरुगुप्त की माता का नाम नहीं दिया गया है, वरन उसे महादेवी भी कहा गया है। इससे अनुमान होता है कि स्कंदगुप्त की माता महादेवी नहीं थी और वह साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। पुरुगुप्त महादेवी का पुत्र होने के कारण कुमारगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी था। भीतरी अभिलेख के एक अंश के आधार पर वौशम महोदय का यह मत है कि स्कंदगुप्त की माता शुद्रा थी और चारणविंद की स्तुतियों ने ही उसे आर्यत्व दिया था। यही कारण है कि उसने अपने अभिलेखों में अपनी माता का उल्लेख नहीं किया है। शुद्रा पुत्र होने के कारण स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी नहीं था। तीसरा, भीतरी अभिलेख का कथन है कि पिता की मृत्यु पर गुप्त वंश की लक्ष्मी विचलित हो गई और अपने भुजबल से शत्रुओं को पराजित करके स्कंदगुप्त ने उसे पुनः स्थिर किया। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि गुप्त वंश की लक्ष्मी के चंचल होने का कारण गृह युद्ध था। चौथा, जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि लक्ष्मी ने समस्त राजपुत्रों का परित्याग करके स्कंदगुप्त को स्वीकार किया। इससे भी संभवतः गृह युद्ध में स्कंदगुप्त की विजय का संकेत मिलता है। पांचवा, स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त ने अपने अपने अभिलेखों में एक दूसरे का उल्लेख नहीं किया है, इससे उन दोनों के बीच शत्रुता का अनुमान लगाया जा सकता है। छठवां, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त के लिए तर पदानुध्यात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इससे भी प्रकट होता है कि वह राज्य का वैध अधिकारी नहीं था, परंतु डॉक्टर राय चौधरी आदि अनेक विद्वान उत्तराधिकार युद्ध को स्वीकार नहीं करते। इस युद्ध के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनका खंडन किया जा सकता है। पहला, कुमारगुप्त के स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त दोनों पुत्र थे। ज्येष्ठ होने अथवा पिता द्वारा मनोनीत होने के कारण पहले स्कंदगुप्त ने राज्य किया, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई पुरुगुप्त राजा बना। दूसरा, डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि स्कंदगुप्त की माता का नाम देविकी था, जिसका उल्लेख भीतरी अभिलेख में हुआ है। यदि यह मान लिया जाए कि भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त की माता का नाम नहीं दिया गया है, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि वह महादेवी नहीं थी। मधुवन और बासखेड़ा ताम्रपत्रों में हर्ष की माता यशोमती का नाम नहीं है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह महादेवी नहीं थी। डॉक्टर वाशम का यह मत है कि स्कंदगुप्त की माता सुद्रा थी नितांत काल्पनिक है। उन्होंने भीतरी अभिलेख के अंश का अर्थ गलत लगाया है। उस अंश का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चारणविंद अपने गीतों और स्तुतियों से स्कंदगुप्त की महत्ता और विशेषता को बढ़ाते थे। यह सत्य है कि भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार देवी की माताओं के नाम तथा उनकी उपाधि महादेवी का उल्लेख है, परंतु स्कंदगुप्त की माता का नाम नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है कि इस अभिलेख में स्कंदगुप्त के लिए महाराजाधिराज की उपाधि का भी उल्लेख नहीं है, यद्यपि यह उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के लिए मिलती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि स्कंदगुप्त महाराजाधिराज भी न था? वास्तव में स्कंदगुप्त की माता का नाम तथा उसकी उपाधि महाराजाधिराज के अनुलेख का एक ही कारण प्रतीत होता है कि भीतरी अभिलेख में कुमारगुप्त तक गुप्त वंशावली गद्य में दी गई है, अतः उसमें सभी ब्यौरा बड़ी सरलता से दे दिया गया है। स्कंदगुप्त संबंधी विवरण छंदोबद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशस्तिकार स्कंदगुप्त की माता का नाम तथा उसकी महाराजाधिराज की उपाधि छंद के सीमित शब्दों में बांध नहीं पाया, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। पुनः, गुप्त वंश में ऐसा कोई नियम नहीं था कि सबसे बड़ी रानी का पुत्र अथवा राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी हो। यदि ऐसा कोई नियम होता तो चंद्रगुप्त प्रथम को अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए सभा नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि महादेवी का अर्थ प्रमुख रानी ही होता था। भीतरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी ध्रुव देवी को महादेवी कहा गया है, जबकि पूना ताम्रपत्र में उसकी दूसरी रानी कुबेर नागा को महादेवी कहा गया है। तीसरा, गुप्त वंश की लक्ष्मी के अस्थिर होने का कारण गृह युद्ध नहीं वरन पुष्यमित्रों आदि के आक्रमण थे। चौथा, जूनागढ़ अभिलेख के कथन का अधिक से अधिक यही अर्थ हो सकता है कि समस्त राजकुमारों में स्कंदगुप्त ही सबसे अधिक योग्य समझा गया और कुमारगुप्त ने उसी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। पांचवा, गुप्त परंपरा के अनुसार राजा अपने अभिलेख में सदैव अपने पिता का ही उल्लेख करता है, भाई का नहीं। भाई के नाम के अनुल्लेख से शत्रुता सिद्ध नहीं होती। छठवां, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त का विवरण छंदोबद्ध पद्य में है। अनुमानतः प्रशस्तिकार उसमें स्कंदगुप्त की माता का नाम, उसकी महाराजाधिराज की उपाधि तथा तत्पादानुध्यात आदि ब्यौरा नहीं दे पाया है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भीतरी अभिलेख में तत्पादानुध्यात शब्द घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के साथ भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त तत्पादानुध्यात से उत्तराधिकारी भी सिद्ध नहीं होता। सामंत शासक भी अपने लिए शब्द का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए 82 गुप्त संवत के उदयगिरी गुहालेख में सनकानिक महाराज ने अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय का तत्पादानुध्यात कहा है। अतः यह शब्द केवल अनुराग सूचक है, उत्तराधिकार सूचक नहीं। कुछ अन्य साक्ष्यों से भी यह विदित होता है कि स्कंदगुप्त को सिंहासन के लिए किसी से भी युद्ध नहीं करना पड़ा था। पहला, आय मंजूश्री मूल कल्प कथा सरित सागर और चंद्रगर्व परिप्रेक्ष्य उत्तराधिकार युद्ध का उल्लेख नहीं करते। उनसे यही प्रकट होता है कि कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुआ। दूसरा, कुमारगुप्त की मुद्राओं से प्रकट होता है कि उसने 136 गुप्त संवत तक राज्य किया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की भी यही तिथि है, जिससे प्रकट होता है कि स्कंदगुप्त के शासन की प्रथम तिथि थी। इस प्रकार कुमारगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त अथवा उत्तराधिकार युद्ध के लिए कोई अवकाश नहीं है। घटोत्कच गुप्त। कुछ साक्ष्यों से घटोत्कच गुप्त एक गुप्त राजकुमार का ज्ञान होता है। पहला, वैशाली में एक राजमुद्रा मिली है जिस पर घटोत्कच गुप्त का नाम मिलता है। यह राजमुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी की राजमुद्रा के साथ मिली है, अतः दोनों के समय के बीच अधिक अंतर नहीं होगा। दूसरा, तुमाई अभिलेख से प्रकट होता है कि घटोत्कच गुप्त पूर्वी मालवा का गवर्नर था। तीसरा, लेलिनग्राड में घटोत्कच गुप्त की एक धनुर्धारी शैली की स्वर्ण मुद्रा संरक्षित है जिस पर उसकी उपाधि विक्रमादित्य मिलती है। श्री अजीत घोष ने घटोत्कच गुप्त की एक अन्य स्वर्ण मुद्रा का पता लगाया है। इन साक्ष्यों से घटोत्कच गुप्त कुमार गुप्त का पुत्र प्रतीत होता है जिसने वैशाली और पूर्वी मालवा में कुमार गुप्त के अधीन गवर्नर के रूप में शासन किया था। श्री पी एल गुप्त का मत है कि कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात घटोत्कच गुप्त ने स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। स्वतंत्र शासक के रूप में ही उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, परंतु घटोत्कच गुप्त का प्रश्न बड़ा विवादग्रस्त है। मुद्राओं के घटोत्कच गुप्त को डॉटर सरकार पांचवी शताब्दी के अंत अथवा छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में रखते हैं। यदि यह सत्य है तो वह स्कंदगुप्त का समकालीन नहीं हो सकता। जो भी हो, कम से कम स्कंदगुप्त और घटोत्कच के बीच युद्ध का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। वैशाली और मालवा दोनों ही स्कंदगुप्त के साम्राज्य में थे, अतः उनमें से किसी भी प्रदेश पर स्कंदगुप्त के समय में घटोत्कच गुप्त का स्वतंत्र शासन नहीं हो सकता था। क्या स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त एक ही व्यक्ति थे? हरनले महोदय ने यह मत प्रतिपादित किया था कि स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त एक ही व्यक्ति थे। इस मत का समर्थन भंडारकर तथा कृष्णदेव महोदयों ने भी किया है। इस मत का प्रमुख आधार यही है कि दोनों ने अपने को कुमारगुप्त का तत्पादानुध्यात कहा है, परंतु का यह अर्थ नहीं है कि दोनों ही कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे। यह शब्द केवल सम्मान सूचक है। यदि ये दोनों एक ही व्यक्ति होते तो ये केवल एक ही नाम से अपनी मुद्राएं चलाते। गुप्त इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जबकि किसी राजा ने दो नामों से अपनी मुद्राएं चलाई हो। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है और विक्रम की। इससे प्रकट होता है कि वे दो भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। साम्राज्य विभाजन का मत डॉक्टर बसाक का मत है कि कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। अधिकांश उत्तरी भारत पर क्रमशः स्कंदगुप्त, सारनाथ अभिलेख के कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त ने शासन किया। दक्षिणी विहार में पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। परंतु यह मत न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। यह नितांत अस्वाभाविक है कि सौराष्ट्र से मगध तक के विस्तृत साम्राज्य का अधिकारी स्कंदगुप्त दक्षिणी बिहार में पुरुगुप्त का एक स्वतंत्र एवं विरोधी राज्य के अस्तित्व को सहन कर लेता। साम्राज्य विस्तार अनेकानेक कठिनाइयों के होते हुए भी स्कंदगुप्त ने अपने पैतृक साम्राज्य की रक्षा करने में सफल हुआ। उसका साम्राज्य विशाल था। जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि चतुर समुद्रों से घिरी संपूर्ण पृथ्वी पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। संपूर्ण मध्य देश उसके अधीन था। यहाँ उसके भीतरी स्तंभलेख, कहोम स्तंभलेख और इंदौर ताम्रपत्र मिले हैं। उसकी गरुण शैली की मुद्राएं भी मध्य देश पर उसका आधिपत्य सिद्ध करती हैं। पटना जिले में बिहार स्तंभलेख मिला है। फील्ड महोदय से स्कंदगुप्त का मानते हैं, अतः बिहार भी इसके अधीन था। बंगाल में उसकी भारी तौल की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र पर उसके अधिकार को सिद्ध करता है। काठियावाड़ में भी उसकी मुद्राएं मिली हैं। इस प्रकार उसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक विस्तृत था। पदाधिकारी, यह विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और प्रत्येक प्रांत जिलों में प्रांत गोप्ता के अधीन था और जिला विषयपति के अधीन। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि पणदस सौराष्ट्र का गोप्ता था। इंदौर ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि अंतर्वेदी में सर्वनाग उसका विषयपति था। कौशाम्बी से शिव मूर्ति पर उत्कीर्ण एक लेख मिला है। उसकी तिथि 139 गुप्त संवत है। संभवतः इसमें स्कंदगुप्त के एक सामंत महाराज भीम वर्मन का उल्लेख है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार पश्चिमी मालवा में उसका गवर्नर प्रभाकर था। विरुद्ध, स्कंदगुप्त अपने पराक्रम के अनुरूप अनेक विरुद्धों और नामों से प्रख्यात था। पहला होम स्तंभलेख में उसे चक्रोपम कहा गया है। दूसरा आर्य मंजुश्री मूल कल्प उसे देवराज कहता है। तीसरा जूनागढ़ अभिलेख उसे श्री परिक्षिप्त वक्षा विष्णु के समान बताता है। चौथा कथासरित सागर में उसे विक्रमादित्य कहा गया है। यह उसकी सबसे लोकप्रिय उपाधि थी। यह उपाधि भीतरी अभिलेख और उसकी मुद्राओं पर भी मिलती है। विक्रमादित्य के स्थान पर कभी कभी उसे क्रमादित्य कहा गया है। मूल्यांकन, चंद्रगुप्त की गणना प्राचीन भारत भारत के महान सम्राटों में होती है। वह बड़ी ही विषम परिस्थिति में सियाचनासीन हुआ था। वृद्ध पिता के शासन के अंतिम चरण में ही गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। यह भी संभव है कि इस आक्रमण में वाकाटकों ने पुष्यमित्रों का साथ दिया हो। बिल्ट के अनुसार नाग राजाओं ने भी गुप्त के आपत्तकाल में लाभ उठाने की चेष्टा की, परंतु गुप्त साम्राज्य पर सबसे अधिक भयंकर आक्रमण हूणों का था। इस बाह्य आक्रमण ने साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में डाल दी थी। इसके साथ ही साम्राज्य के कुछ प्रदेशों में विद्रोह भी होने लगे थे। इनमें मालवा का प्रांत सबसे अधिक कष्टदायक सिद्ध हुआ। स्कंदगुप्त ने अदम्य पराक्रम और धैर्य का परिचय देते हुए सभी बाह्य और आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया। इसी से भीतरी अभिलेख में उसे गुप्त वंश का महत्वपूर्ण वीर कहा गया है। कहम अभिलेख में उसे सक्रोपम बताया गया है। बाह्य आक्रमणों से देश जाति और संस्कृति की रक्षा करने वाले स्कंदगुप्त के प्रति सारी प्रजा कृतज्ञता का अनुभव करती थी। उसकी यशोगाथा प्रत्येक दिशा में गाई जाती थी। उसकी उपाधि विक्रमादित्य सार्थक थी। वह एक महान विजेता, राष्ट्रोद्धारक, गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक और एक सदैव शासक था। उसने अपने विशाल साम्राज्य का संगठन किया। उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया और उनमें योग्य गवर्नर नियुक्त किए। सौराष्ट्र के भौगोलिक एवं सैनिक महत्व को समझते हुए उसने वहां गवर्नर नियुक्त करने में बड़ी सावधानी बरती और बड़े सोच विचार के पश्चात पर्णदत्त को वहां का गवर्नर बनाया। वह सदैव प्रजा की भलाई करने में लगा रहता था। उसके शासनकाल में प्रसिद्ध झील सुदर्शन का बांध टूट गया था, जिससे जनता को बड़ा कष्ट होने लगा। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने उसकी मरम्मत कराई और उसके तट पर एक विष्णु मंदिर बनवाया। उसके राज्य में अधर्मी, दुखी, दरिद्र, व्यसनी, अदर्य और दंडनीय मनुष्य नहीं थे। वह पराजित और दुखी लोगों के प्रति दया का बर्ताव करता था। आर्य मंजुश्री मूल कल्प में उसे श्रेष्ठ बुद्धिमान और धर्मात्मा कहा गया है। स्कंदगुप्त स्वयं वैष्णव था। अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। अपने पिता की स्मृति में उसने भागवत विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी। अपनी मुद्राओं पर उसने लक्ष्मी और गरुड़ के चित्र अंकित कराए। उसके अधीन सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। उसके राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी। इंदौर तामपत्र के अनुसार एक ब्राह्मण देव विष्णु ने सूर्य मंदिर में दीप जलाने के लिए दान दिया था। कहम अभिलेख से प्रकट होता है कि द्विजों, गुरुओं और अतिथियों में श्रद्धा रखने वाले मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थकों की 5 पाषाढ़ प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई थी। इसी अभिलेख से प्रकट होता है कि स्कंदगुप्त के साम्राज्य में शांति थी।